चालु अस्य भंदाया मुक्ताये चात्मनो मतं कुनेशु शक्तं बंधाया रथं बापुंसि मुक्ताये. The stage in which the consciousness of the living entity is attracted by the three modes of material nature is called conditional life. But when that same consciousness is attached to the Supreme Personality of Godhead, one is situated in the consciousness of liberation.
जिस स्तर पर किसी भी जीवात्मा की चेतना तीन गुणों पर आसक्त होती है, उसी को बद्धावस्था कहते हैं. और यही चेतना जब भगवान के प्रति आसक्त होती है, उसे ही जीवन मुक्ति की संज्ञा दी जाती है.
Ladies and gentlemen, on behalf of my most beloved Lord and Master, Guru Maharaj, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, we welcome you to this auspicious occasion where we are celebrating the glories of the 100th anniversary of the appearance of Srila Prabhupada in this world.
माताओं और सज्जनों, मैं आप सबको मेरे गुरु महाराज श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की ओर से उनके इस जन्म शताब्दी महोत्सव के निमित्त पर आयोजित सत्संग कार्यक्रम में आप सभी के पधारने पर आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा.
As we have heard, Srila Prabhupada gave his life as an utter sacrifice to bring the glories of Krishna to all of the world.
जैसे कि हमने सुना, श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का विश्व भर में प्रचार करने हेतु अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया.
He taught the process of pure bhakti to every continent on this earth.
उन्होंने शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है वो पृथ्वी के हर एक खंड पर उसका प्रचार किया.
As we have been so fortunate to see in this wonderful multimedia presentation, many of the beautiful Archimurtis that Srila Prabhupada installed in various parts of the planet.
जैसे कि अभी हमने इस मल्टीमीडिया शो में देखा कि कितने ही अद्भुत राधा कृष्ण के अर्च विग्रहों को श्रील प्रभुपाद ने विश्व भर के मंदिरों में स्थापित किया है.
By Srila Prabhupada's divine influence, about 400 such temples where devotees are worshipping the deities of Radha and Krishna are established throughout the world.
श्रील प्रभुपाद के दिव्य प्रभाव से आज 400 ऐसे राधा कृष्ण के मंदिर हैं जहां पर भक्त नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं.
And we see by the beautiful sight of these deities how they are worshipped with great love and enthusiasm.
और हम जब इन अर्च विग्रहों के मनोरम दृश्य को देखते हैं तब हमें ये पता चलता है कि कितना प्रेम और कितने प्रेम और भक्ति से इनकी पूजा की जाती है.
And throughout the world, thousands upon thousands of people relinquished their attachments to sinful activities and wasting their lives sitting before mundane televisions and hearing materialistic music, and dedicated their lives to hearing and chanting the glories and the names of the Supreme Personality of God.
और दुनिया भर में सहस्रावधि लोगों ने इस भौतिक दुनिया की समस्त आसक्तियों को त्याग कर, जैसे कि टीवी देखना और सिनेमा संगीत सुनना, ऐसी जो भौतिक आसक्तियां हैं उनको त्याग कर वो भगवान की प्रेममयी भक्ति में रत हो गए।
इन दिस वे थ्रू हिज द सुप्रीम कंपैशन दैट कृष्णा मैनिफेस्ट इनटू द वर्ल्ड थ्रू हिज डिवोशनल सर्विस Srila Prabhupada established the Krishna consciousness movement.
और इस प्रकार से परम करुणा दिखाकर, जो कि भगवान ने उनको पूर्ण रूप से पूरित कर दिया था, श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत संघ की विश्व भर में स्थापना की।
In this particular sloka that we are reading today from the third canto of Srimad Bhagavatam, Lord Kapila Dev is explaining exactly what is Krishna consciousness.
आज जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, जो कि श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद से लिया गया है, उससे हम जानेंगे कि वास्तविक कृष्ण भावनामृत क्या है।
Throughout the world today, there is a great crisis in the ecology.
आज सारी पृथ्वी पर पर्यावरण का एक भयानक संकट आ गया है।
There is so much suffering, so much disease. In fact, the whole human race is practically on the verge of extinction due to the terrible pollution of the atmosphere.
इतनी बीमारियां, इतना प्रदूषण है कि समस्त मानव समाज आज ऐसा खतरा मोल रहा है कि वो शायद पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए।
And even the politicians of the biggest nations of the world are having emergency conferences trying to figure out some ways and means to bring this planet back to its natural healthy state.
और बड़े बड़े राष्ट्रों के, बड़े प्रगत राष्ट्रों के नेता भी आपातकालीन सभाएं बुला रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए।
But we should know that this world is an extension of the state of consciousness within the hearts of men and women.
लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि जिस दुनिया को हम देखते हैं, ये बाहरी दुनिया केवल हमारा जो अंतर्मन है उसका ही एक विस्तारित प्रतिबिंबित रूप है।
If your consciousness is filthy, the only thing you can do is make the world filthy.
अगर आपकी भावना बहुत गंदी है तो आप बाहर की दुनिया को भी गंदा बना देंगे।
You can have multi-millions of dollars, you can have several PhDs in your education, but if your heart is unclean, the utilization of all these things will only assist to make the world a filthier and more miserable place.
आपके पास भले ही लाखों करोड़ों डॉलर्स हों या आपके पास अनेक PhD डिग्रियां हों, अगर आपका हृदय गंदा है तो इन साधनों से आप बाहर के विश्व को और अधिक गंदा ही बनाते जाएंगे।
And so-called modern education has missed the whole purpose of the needs of the world.
और तथाकथित आधुनिक शिक्षा ने ये जो इसका मूल सिद्धांत है उसको पूर्ण रूप से चूक दिया है।
Real knowledge in education means to understand the process by which we can clean our consciousness, purify our hearts, and actually create a clean and purified world where people can be happy.
सच्चा ज्ञान या सच्ची शिक्षा तो वही है कि हम अपने मलिन हृदय को किस प्रकार से शुद्ध बना सके, जिसके बाद हम सारे विश्व को शुद्ध बना सकते हैं, जिससे में सारे मनुष्य आसानी से रह सकें।
Within this body is the eternal soul.
इस शरीर में नित्य आत्मा निवास करता है।
Which is full of knowledge and full of bliss.
और ये आत्मा पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद से पूरित है,
पार्ट ऑफ गॉड,
और वो भगवान का अंश है.
द नेचर ऑफ एवरी सोल इज टू बी कृष्ण कॉन्शियस.
हर एक जीवात्मा का स्वभाव है कि वो कृष्ण भावना भावित हो.
टू सर्व द लॉर्ड विथ लव,
भगवान की प्रेममयी सेवा करें.
बट एट दिस टाइम द सोल ड्यू टू forgetfulness of its real nature is attracted to this world which is constituted by three modes of material nature.
लेकिन ये आत्मा अपने मूल स्वभाव को भूल जाने के कारण ये जो त्रिगुणात्मक बाहरी दुनिया है उससे आसक्त हो गया है.
The mode of goodness, passion and ignorance.
ये तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण.
And due to this attraction, the soul goes deeper and deeper and deeper into forgetfulness of its true nature.
और इस आसक्ति के कारण ये जीवात्मा विस्मृति की खाई में और गहरा गहरा नीचे जाता रहता है.
And according to the particular type of desire that the soul cultivates to exploit the resources of material nature, there are 8,400,000 species of life that the soul has to enter due to its karmic consequence.
और किस विशिष्ट प्रकार की वासना के कारण उस जीवात्मा ने अपनी आसक्ति बनाई है, उसी वासना के अनुसार यहाँ पर 84 लाख शरीर उपलब्ध हैं, जिसमें निवास करके उसको अपना कर्म फल भोगना होता है.
After transmigrating through so many lifetimes of birth, old age, disease and death, alas, the soul enters into the human species.
और इस प्रकार से अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करने के पश्चात उस जीवात्मा को दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होता है.
This human form of life is a great gift of the Lord.
और ये मनुष्य जीवन ये भगवान का एक बड़ा ही अनमोल उपहार है.
Because it affords the opportunity to purify our consciousness of all of these materialistic attachments and once again experience our eternal spiritual identity beyond birth and beyond death.
और मनुष्य जीवन में हम सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो सकते हैं और अपना जो मूल आध्यात्मिक स्वभाव है जिसमें कोई जीवन, कोई जन्म या मृत्यु नहीं होता, उसका अनुभव कर सकते हैं.
Human life is meant specifically and exclusively for the purpose of purification.
मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है शुद्धता करना.
नयाम देहो देह बजाम न लोके कस्तान कमान आहति विभुजम जय. It is not meant to regress again into the way of life of the dogs and hogs by trying to enjoy our senses.
मनुष्य जीवन का ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि केवल इंद्रिय भोग करके फिर से कुत्ते और सुअर की तरह जिया जाए.
In fact, in Bhagavad Gita, Lord Krishna explains that the process of sense gratification is the source of all misery.
यहाँ तक के भगवान तो भगवद गीता में बताते हैं कि ये विषय भोग का मार्ग है, यही हमारे दुखों का कारण है.
We practice sense gratification because we want happiness, but it is the very means which keeps us from real happiness.
हम इंद्रिय भोग इसलिए करते हैं ताकि हम सुखी हो जाएं, लेकिन यही इंद्रिय भोग हमको सच्चे सुख से वंचित रखता है.
Srila Prabhupada would sometimes use the example of how they catch foolish monkeys in the jungle.
Srila Prabhupada कभी कभी ये दृष्टांत देते थे कि किस प्रकार से वन में मूर्ख बंदरों को पकड़ा जाता है.
They put some nice food within a container.
वो ऐसा करते हैं कि किसी पात्र में कुछ बहुत अच्छे व्यंजन खाने के पदार्थ रखते हैं.
It has a wide bottom and a thin top, this container.
वो पात्र नीचे से तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका जो मुंह है वो बहुत छोटा होता है.
And the monkey likes to enjoy this food.
और बंदरों को ऐसा खाना बहुत पसंद होता है.
So somehow or other, to get his hand into the container, he makes it as small as possible and slips it inside, and then he holds on to as much food as his hand can possibly hold.
और इस तरह से बड़े परिश्रम पूर्वक अपने हाथ को सिकुड़कर वो बंदर पात्र में अपने हाथ को डालता है और जितना हो सके उतना अन्न पदार्थ है उनको हाथ में पकड़ लेता है.
But because his hand is so filled with food, he cannot get it out of the container.
लेकिन एक बार जब उसने हाथ में बहुत सारे पदार्थ भर दिए हैं, उसको बाहर निकालने में बड़ा ही कष्ट होता है.
And he's struggling and struggling and straining.
और वो बहुत परिश्रम करता रहता है.
And the hunter, he comes with his net right before the monkey.
और शिकारी जो है अपना जाल लेकर सीधे बंदर के समक्ष आ खड़ा होता है.
And if the monkey would just let go, he could slip away and be free from death.
और बंदर अगर सिर्फ जो चीज उसने हाथ में पकड़ के रखी है उसको छोड़ दे तो आसानी से अपना हाथ बाहर निकालकर भाग सकता है.
But the monkey is so much thinking, I have to enjoy this food, that he will not let go.
लेकिन बंदर सोचता है कि ये तो मुझे खाना है ही और इसलिए उसे छोड़ता नहीं बिल्कुल.
And the monkey is put in the net and killed.
और इस तरह से बंदर को जाल में पकड़ा जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है.
So this material energy and its controlling force of Maya is making monkeys out of the whole human society.
तो इस तरह से ये भौतिक प्रकृति सारे मनुष्य समाज को इस प्रकार से केवल बंदर बना रही है.
She offers us so many objects to attract us, thinking, "I let me enjoy, let me enjoy."
ये हमको हमारे सामने अलग-अलग प्रकार के बहुत सारे आकर्षित वस्तुएं खड़ी करती है और उन वस्तुओं को देखकर हम सोचते हैं कि इनका मुझे तो भोग करना है ही.
Hankering and lamenting, hankering for what we do not have and lamenting for what we may lose.
केवल शोक और मोह, मोह उस चीज का जो हमें चाहिए, शोक उस चीज का जो हमारे हाथ से चली गई है.
And gradually, death comes and puts its net around us and takes us away.
और धीरे धीरे मृत्यु हमारे समक्ष आ खड़ा होता है, अपना जाल फैलाता है और हमें लेकर चला जाता है.
Because even in our greatest educational institutions, universities and colleges, they are just training us to be very, very sophisticated, intellectual monkeys.
क्योंकि आज हमारी जो बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित शिक्षा की संस्थाएं हैं वहां पर अलग अलग बड़े ही तांत्रिक दृष्टिया प्रगत दृष्टि से हमको सिखाया जाता है, लेकिन इसका अंत क्या है कि हम बहुत पढ़े लिखे बंदर बन जाते हैं.
Through so many thousands and thousands of elaborate courses and subject matters, they're just teaching us various ways of trying to hold on to that food in the container.
तो हजारों हजारों विषय सिखाकर हमको एक ही बात सिखाई जाती है कि किस प्रकार से हम जो पात्र की वस्तुएं हैं उनको पकड़ के रखना चाहिए.
But nowhere are we taught, you foolish monkey, let go.
लेकिन कहीं भी हमको ये सिखाया नहीं जाता है कि मूर्ख बंदर उस चीज को छोड़ दो.
प्रहलाद महाराज said, if you want to be happy in this world, all you have to do is stop trying to be happy in this world.
प्रहलाद महाराज हमें ये उपदेश देते हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सुखी होना है तो आपको इस दुनिया में सुखी होने का प्रयत्न छोड़ना चाहिए.
But the problem is, we all want to be happy in this world.
लेकिन समस्या तो यही है कि हम सबको इसी दुनिया में सुख खोजने की इच्छा है.
And some yogis and religious teachers come forward and say that trying to be happy in this world is an illusion. So just stop trying to be happy at all and just sit in a state of trying to empty and void your mind of anything.
और कुछ योगी और कुछ धर्मगुरु ऐसा प्रचार करते हैं कि इस दुनिया में सुखी होना या सुख की चेष्टा करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है और आप केवल शांत ध्यान में बैठकर अपने मन को केवल शून्य अवस्था में विलीन कर दो.
But that is not possible.
लेकिन ये असंभव है.
Because the nature of the soul, the Brahma Sutra says, is anandamayo bhyashat, it is full of bliss, so it is always seeking bliss.
लेकिन ब्रह्म सूत्र तो ये कहते हैं कि आनंदमयो भ्यासात जो आत्मा है उसका स्वभाव ही है कि वो आनंद को ढूंढे.
The soul wants active dynamic pleasure.
जीवात्मा को चेतना युक्त आनंद की इच्छा है.
And here the secret of real pleasure is being revealed.
और यहां पर सच्चे आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए इस रहस्य का उद्घाटन किया जा रहा है.
Rather than cultivating within our life attraction for the dying pale objects of the senses, develop attraction for the Supreme Personality of Godhead, Krishna.
वो ये है कि इस दुनिया की मृत और फीकी वस्तुओं पर आसक्त होने के बजाय क्यों न हम श्री भगवान के ऊपर आसक्त हो जाए.
The Narada Pancharatna explains Sarvapadiva Nirmuktam Tatparatvana Nirmalam Hrishikena Hrishikesa Sevanam Bhaktir Uchyate. That the same very mind and senses which are causing us so much difficulty, confusion and anxiety and pollution, if they are just utilized in the service of the Lord, gradually they become purified.
Narad Pancharatra mein kaha gaya hai ki wahi man aur indriya jo ki हमें इतनी चिंता और अंत में प्रदूषण में डाल देते हैं वही मन और इंद्रिय अगर निरुपाधिक रूप से भगवान की सेवा में उपस्थित की जाए तो उससे हमको आनंद प्राप्त होगा.
दिस प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द माइंड एंड सेंसेस थ्रू द एंगेजमेंट ऑफ द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड भक्ति.
तो मन और इंद्रियों को शुद्ध करने की जो व्यावहारिक विधि है जिसमें हम भगवान की सेवा में उनको लगाते हैं उसे ही भक्ति कहते हैं.
एंड कृष्ण टेल्स अस इन गीता भक्तिया माम अभी जानाति यवन यश्चस्मि तत्त्वतः. इट इज ओनली थ्रू भक्ति दैट वी कैन कनेक्ट टू द सुप्रीम गॉडहेड एंड फाइंड रियल हैप्पीनेस इन आवर लाइफ.
के केवल भक्ति योग से ही केवल भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं और उनके साथ योग में जुड़कर आनंद प्राप्ति कर सकते हैं.
And one who experiences that happiness becomes beyond birth and beyond death.
और जिसने एक बार ऐसे आनंद को अनुभव कर लिया है वो जन्म मृत्यु के परे हो जाता है.
Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the supreme Bhagavan, Purushottam, Krishna, appears in this age of Kali Yuga to teach the means by which we can always be conscious of Krishna in our life.
Bhagavan Shri Chaitanya Mahaprabhu, jo ki swayam Shri Krishna hi hain, is yug mein wo yug dharma sikhane ke liye aate hain, jisse ki hum vastavik sukhi ho sake.
By always remembering Krishna through taking the position of his humble servant.
Aur wo marg hai, hamesha nitya श्री कृष्ण का स्मरण करना उनके दास के रूप में.
एंड क्लेंजिंग आवर हार्ट्स थ्रू हियरिंग हिज ग्लोरीज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम एंड अदर सच स्क्रिप्चर्स एंड चैंटिंग हिज होली नेम्स.
श्रीमद् भागवत और तत्सम शास्त्रों से उनकी महिमा को श्रवण करना और उनके पवित्र नाम का संकीर्तन करना.
द ओरिजिनल बायोग्राफी ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु was called Chaitanya Mangala.
Shri Chaitanya Mahaprabhu ka jo mool jeevan charitra tha uska naam pehle Chaitanya Mangal tha.
It was written by that very great acharya an intimate associate of the Lord of the name Vrindavan Das Thakur.
Aur use Shri Vrindavan Das Thakur jo ki ek mahan acharya aur Bhagwan Chaitanya Mahaprabhu ke अंतरंग पार्षद थे उन्होंने लिखा था.
Today is the very auspicious festival of the disappearance day of Srila Vrindavan Das Thakur.
आज श्री वृंदावन दास ठाकुर का तिरोभाव महोत्सव की तिथि है.
The great acharyas understood that he was none different than Vedavyas who wrote Srimad Bhagavatam to tell the beautiful life and pastimes of Lord Shri Krishna.
महान आचार्यों ने जाना है कि ये वृंदावन दास ठाकुर वही श्रील वेद व्यास जी हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की थी और वो अब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का कथन करने के लिए फिर एक बार अवतरित हुए हैं।
So therefore, with great pleasure and ultimate respect, they renamed his book Chaitanya Bhagavat.
और इसलिए बहुत आनंद होकर और बहुत सम्मान पूर्वक उन्होंने उनके इस ग्रंथ का नामकरण चैतन्य भागवत ऐसे कर दिया।
श्रीमद् भागवत इज द लाइफ ऑफ कृष्णा एंड चैतन्य भागवत इज द लाइफ ऑफ लॉर्ड गौरांग महाप्रभु।
श्रीमद् भागवत ये भगवान श्री कृष्ण की जीवनी है और चैतन्य भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है।
इन दिस वंडरफुल लिटरेचर देयर आर सो मेनी स्टोरीज which teach the ultimate lessons of life through the example of Lord Chaitanya and his devotees.
इस ग्रंथ में ऐसे अनेक अद्भुत दृष्टांत दिए गए हैं जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की जीवन की लीला से जीवन का परमोच्च लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए ये शिक्षा अर्पण करते हैं।
I would like with your permission to narrate one such story which is very popular and worshipped within the hearts of all Gaudiya Vaishnavas.
आपकी अनुमति से मैं ऐसी लीला यहाँ पर कथन करना चाहूंगा जो कि समस्त गौड़ीय वैष्णव को अत्यंत प्रिय है और जिसका वे अपने हृदय में पूजन किया करते हैं।
लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इनॉग्यूरेटेड दिस वंडरफुल सैंकीर्तन मूवमेंट ऑफ द कांग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का ये संकीर्तन आंदोलन शुरुआत की।
In fact, in the house of one of his devotees, Srivas Thakur, throughout every night, he and his associates would simply dance in transcendental ecstasy and chant the holy names of the Lord.
Srivas Thakur, इस अपने पार्षद के घर में प्रति रात को प्रति रात्रि चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तगण संकीर्तन किया करते थे।
Because they did not want to waste a moment.
क्योंकि वो एक क्षण मात्र को भी नष्ट नहीं करना चाहते थे।
We should understand how valuable each moment we have in this human form of life is.
ये मनुष्य जन्म का प्रत्येक क्षण कितना मूल्यवान है ये हमें जान लेना चाहिए।
Srila Guru Maharaj, Prabhupada, would often quote Chanakya Pandit that time is money.
Srila Prabhupada, Chanakya Pandit ke is shlok ko hamesha bataya karte the ke samay yane sampatti hai.
But Chanakya Pandit says time is more than money.
Lekin Chanakya Pandit kehte hain ke samay to sampatti se bhi adhik kuch hai.
Because if you lose crores and crores of rupees, somehow or other you can work and get it back.
क्योंकि भले ही आपके करोड़ों रुपए का आपका नुकसान हुआ हो फिर भी आप किसी न किसी प्रकार से उस नुकसान को भर सकते हैं।
But if you waste one moment of this human life, even for crores and crores and crores and crores of dollars, you cannot buy that one moment back. It is lost forever.
लेकिन अगर आपने एक क्षण को खो दिया है तो करोड़ों करोड़ों अरबों डॉलर्स देकर भी आप उस क्षण को वापस नहीं बुला सकते।
The most precious thing we have is the moments we have to live.
हमारे पास सबसे मूल्यवान चीज तो वही है कि जो हमारे क्षण हैं हमारे जीवन के।
When we use each moment for purification of our hearts, then that moment creates an eternal asset of spiritual progress in our life.
तो अगर हम प्रत्येक क्षण को आध्यात्मिक जीवन की वृद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसी क्षण से एक एक आध्यात्मिक वित्त या ऐसी सामग्री तैयार हो जाती है।
But a moment wasted without cultivating attraction to Krishna is the most sorrowful loss.
लेकिन अगर कृष्ण भक्ति का अनुशीलन किए बिना कोई भी क्षण अगर गया तो वो नित्य का नुकसान हो गया.
Because such moments are passing, and with every second we are coming closer to death.
क्योंकि ऐसे क्षण तो जाया ही होते रहते हैं और हम धीरे धीरे मृत्यु के निकट आते रहते हैं.
Human life is meant to utilize our intelligence to orient everything around our spiritual purification.
मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि किस प्रकार से हमारी आध्यात्मिक शुद्धता हो सके.
So Lord Chaitanya taught this practically.
और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसका बड़ा ही व्यावहारिक दर्शन दिया.
He and his associates were such liberated souls, they simply required no sleep.
उनके पार्षद ऐसे मुक्तात्मा थे कि उनको लगभग कोई निद्रा की जरूरत ही नहीं थी.
When everyone else was sleeping, they would be dancing in transcendental ecstasy with their arms raised, loudly chanting the holy names.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जब बाकी समस्त समाज निद्रिस्त अवस्था में होता था तब चैतन्य महाप्रभु के भक्त ऊर्ध्वबाहु करके ऐसा संकीर्तन किया करते थे.
The envious people, they are always anxious to criticize the Lord's devotees.
लेकिन जो लोग मत्सर करते थे वो हमेशा भगवान के भक्तों के प्रति बहुत ईर्ष्या रखते थे.
These devotees are so useless. Why don't they get nice sleep so that they could work hard and make lots of money and enjoy life?
वो ऐसे कहते थे कि ये भक्त लोग हैं, ये ठीक से सोते क्यों नहीं, ताकि वो दिन में कुछ अच्छी तरह से मेहनत करके कमाएं और फिर बहुत अच्छी तरह से इंद्रिय भोग कर सकते हैं.
We have to make so much money, because we have to get our daughters married.
हमको इतना पैसा कमाना है, जिससे कि हम हमारी लड़कियों की शादी कर सकें.
And we want them to marry a wealthy family, so we have to give big big dowry and big big wedding and all other expenses.
हमको हमारी लड़कियों की शादी बहुत ही अच्छे श्रीमान घराने में करनी है तो बहुत सारा दहेज भी देना है.
एंड वी हैव टू मेक सो मच मनी टू पुट देम थ्रू कॉलेज सो दैट दे ग्रो अप टू बी एसेस लाइक अस जस्ट वर्किंग हार्ड फोमिंग एट द माउथ विद नो पर्पस इन लाइफ.
और हमको इतना पैसा कमाना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कॉलेज में जा सके और कॉलेज में जाने के बाद हमारे जैसे बड़े गधे बन जाएं और इस तरह से मेहनत करते ही रहें.
And besides that, our neighbors have a new car, so we have to get a better car than them, otherwise our distinction will be lost.
और एक बात यह है कि हमारे पड़ोसी ने भी नई गाड़ी ली है, हमको तो उससे भी बड़ी गाड़ी लेनी है ताकि समाज में हमारी प्रतिष्ठा भी बनाए रखे.
And we have to get newer clothes to make sure we're always up with the latest fashions.
और हमको नए नए वस्त्र भी लेने हैं जिससे कि हम सही प्रकार की फैशन में बनाए रखें.
And we need nicer and nicer facilities within our house so we can eat, sleep, mate and defend like the hogs and dogs in a nice beautiful palatial place.
और हमको हमारा घर भी इतना पैसा कमाना है कि हमारा घर अच्छी अच्छी सुख सुविधाओं से भरा रहे ताकि हम कुत्ते और सुअरों की तरह आहार निद्रा भय और मैथुन में रत रहे.
I'm sorry if I am too blunt, but my Guru Maharaj has taught me this process.
मुझे माफ करना अगर मैं बहुत कठोर वचन सुना रहा हूँ, लेकिन यही रीत है जिस प्रकार से मेरे गुरु महाराज ने मुझे शिक्षित किया है.
We have to be honest about the reality of this world.
हमें इस दुनिया की सत्य परिस्थिति के बारे में बहुत ही प्रामाणिक रहना चाहिए.
So such foolish materialistic people were condemning Lord Chaitanya and his associates for wasting their valuable human lives by cultivating Krishna consciousness.
इस तरह से ऐसे मूर्ख विषयी लोग महाप्रभु के भक्तों को जो भी वो काम कर रहे हैं भगवान की भक्ति का उसमें इतना समय बर्बाद करने के लिए हमेशा दूषण दे रहे थे.
But the devotees, they don't mind what the materialistic people say. Rather, their hearts weep and cry in compassion for such unfortunate souls.
लेकिन भक्त लोग तो विषयी उनको चाहे कितनी भी गालियां दें उसका वो कोई बुरा नहीं मानते, उल्टा वो तो इन विषयों की परिस्थिति को देखकर बहुत उनको रोना आता है.
But the pious people, they would worship the devotees and think that they are so fortunate that they can chant and dance with Lord Gauranga throughout the whole night. If someday we become purified and truly pious, maybe he will allow us to also chant and dance with him.
लेकिन जो पुण्यात्मा थे, पुण्यवान लोग, वो तो भक्तों का सम्मान करते थे. वो तो कहते थे कि कब वो दिन आएगा कि हमको भी भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु के साथ ऐसे दिव्य नृत्य और गायन करने का अवसर मिले.
So after the kirtan in the morning, these pious souls will come and bring gifts of bananas and fruits and cloth and whatever they could, they would come to present it for the pleasure of the Lord.
और इस तरह से सुबह होते ही ऐसे पुण्यवान लोग भक्तों के लिए फल, वस्त्र आदि अनेक उपहार लेके आते थे.
And they would humbly, with great eagerness, beg the Lord to be merciful to them.
और बहुत ही नम्रता से वो भगवान के समक्ष प्रेम की याचना करते थे.
And he gave them all his great mercy by instructing them in the science of the Yuga Dharma.
और भगवान उनको अपनी परम कृपा इस प्रकार से प्रदान करते थे कि उनको जीवन में आत्म साक्षात्कार किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है उसके बारे में उपदेश देते थे.
He told them that you are all grihasthas with families. In your own home, bring your families together or your friends. If you have a small house, you can even sit in the front courtyard of your house. And all of you, just clap your hands very nicely and chant this 16-word mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Chaitanya Mahaprabhu ne kaha कि आप सब गृहस्थाश्रमी हैं, आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो आप अपने परिवार को इकट्ठा कीजिए, आसपास अड़ोस पड़ोस के परिवार को भी इकट्ठा कीजिए. अगर अपना आपका घर छोटा है तो बरामदे में बैठकर भी सिर्फ तालियां बजाकर ये जो षोडश अक्षरी 16 अक्षरी महामंत्र है उसका आप कीर्तन किया करिए.
लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन दैट दिस महामंत्र इज द मोस्ट पावरफुल एंड प्योर of all remedies for the disease of material suffering.
Chaitanya Mahaprabhu ne kaha ki ye jo mahamantra hai ye apne hriday ki sari malinta ko nikalne ka sabse shaktiman aur sabse prabhavi tarika hai.
There are many remedies for various diseases if you go to the pharmaceutical store.
Agar aap dawai ki dukan mein jayenge to अनेक अनेक व्याधियों के लिए अनेक अनेक औषधियां रखी जाती है.
But we require a physician to tell us which particular medicine is most effective for the disease that we have.
लेकिन हमको ऐसे डॉक्टर या वैद्य की जरूरत होती है जो हमारी अपनी व्याधि के ऊपर कौन सी औषधि उचित परिणाम करेगी ये बताना चाहिए.
In this age of Kali Yuga, everyone is infected with the disease of quarrel and hypocrisy.
इस कलयुग में यहाँ का प्रत्येक जीव कलह और दाम्भिकता के रोग से ग्रस्त है.
There is so much spiritual laziness and so many material desires of lust and greed and envy and anger and pride and illusion that there is conflict within us and conflict all over the world.
आज हम देखते हैं कि इतना आध्यात्मिक आलस्य है और इतना लोभ, क्रोध, मद, मोह, मत्सर है कि हमारे सारी ओर यही चीजें मंडराती है.
And the Vedic scriptures teach us that the specific medicine which can cure us of this disease in this age of Kali Yuga, cleanse and purify our hearts and bring it back to its a natural original position of being eternal, loving servants of the Lord is the congregational chanting of the Hare Krishna Maha Mantra.
लेकिन हमको वैदिक शास्त्र समझाते हैं कि इस कलयुग में जो एकमात्र औषधि है, जो सचमुच परिणाम करके हमारे हृदय की समस्त कलमशों को निकाल सकती है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन.
And there are no hard and fast rules for this chanting.
और इसके लिए कोई काल या नियम के काल के कोई नियम नहीं है.
Make your family and your home into an ashram by just clapping your hands and chanting Hare Krishna.
सिर्फ ताली बजाकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके आप अपने घर को भी एक आश्रम बना सकते हैं.
And if possible, you play karthals, mridangas, and in this way make your lives perfect.
और हो सके तो आप करताल या मृदंग बजाकर कीर्तन कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं.
Lord Chaitanya gave them the supreme gift, and all those fortunate persons, throughout the day and night, they could always be heard, whether they were in their homes, whether they were in their work, everywhere was the loud chanting of Hare Krishna Mantra.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Shri Gauranga Mahaprabhu ki
Jai. इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सभी पुण्यवान व्यक्तियों को उपदेश दिया और फिर जहां भी वो हो, अपने घर में हो या अपने काम की जगह पर हो, वो हमेशा नित्य ऐसे महामंत्र का कीर्तन किया करते थे.
गृहे ताको वाने ताको सदा हरि बोले ताको. भक्ति विनोद ठाकुर has said, whether you are grihastha with wife and children or sannyasi living in ashram or in the forest, just chant the holy names. Be free from all the miseries of this material world and experience transcendental happiness.
Srila Bhakti Vinod Thakur ne kaha hai ki agar aap ghar mein rehne wale grihasthashrami ho ya ban mein rehne wale koi sanyasi ho, aap nitya is Hare Krishna Mahamantra ka jap karke parmoch sukh ka anubhav kiya karein.
One night while Lord Chaitanya was dancing in transcendental happiness with all of his devotees in the house of Srivas, a wonderful thing took place.
Ek samay jab raat mein Chaitanya Mahaprabhu apne parshadon ke saath divyolas ke saath nritya gayan kar rahe the, ek bahut adbhut ghatna ghati.
The son of Srivas, who had contracted a very, very critical disease, died, and his soul entered into the spiritual world, where on that very night he saw directly the Supreme Personality of Godhead, Narayan.
Srivas Thakur ka putra, jo ki bahut gambhir roop se bimar tha, usi ratri uski mrityu ho gayi, aur uski atma usi kshan वैकुंठ लोक में जाकर भगवान श्री नारायण का दर्शन कर सकी.
Because the soul had left the body of this child, which we call death in this world, the ladies of the house in the back rooms were weeping very loudly.
क्योंकि उस जीवात्मा ने शरीर का त्याग कर दिया था, जिसे के हम मृत्यु कहते हैं, उस घर की सारी स्त्रियां रोने लगी.
श्रीवास ठाकुर came back to see what was the commotion.
श्रीवास ठाकुर अंदर आके देखने लगे कि यहां पर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है.
His family members and relatives, with tears in their eyes, they said, look, here is the corpse of your son, he has died.
अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्होंने श्रीवास जी से कहा कि देखिए, यही आपका पुत्र है, अब तो इसकी मृत्यु हो गई है.
श्रीवास said, this is very auspicious.
श्रीवास जी ने कहा, यह तो बहुत ही शुभ समाचार है.
I can see that he has left his body while Lord Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead and his devotees have been chanting the holy names loudly in this house.
मैं देख सकता हूं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस घर में संकीर्तन कर रहे थे तभी इसकी आत्मा ने इस शरीर को त्याग दिया है.
The Lord is none different than his name. Anyone who leaves this body in the presence of the holy name is most fortunate.
भगवान अपने नाम से अभिन्न है.
This child is so fortunate that he has perfected his life and gone back to the spiritual world on this very night.
ये बालक इतना भाग्यशाली है कि उसने सचमुच भगवत धाम को ही प्राप्त कर दिया है.
कृष्ण explains in Gita, yam yam vapi smaran bhavam tajat yante kalevaram, that whatever we think of at the time of death, we will achieve that without fail. Antakale chamame ma smaran makva kalevaram. If we think of Krishna at the time of death, Krishna says, it is his promise. We will go to him.
भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में से समझाते हैं कि जिस प्रकार के भाव मृत्यु के समय होते हैं हमको वैसे ही अवस्था प्राप्त होती है, और अगर हम श्री कृष्ण का स्मरण मृत्यु के समय करते हैं तो श्री कृष्ण का ये वचन है कि हमको केवल उन्हीं की प्राप्ति हो जाती है.
Death is the final exam of life.
मृत्यु ये हमारी आखिरी कसौटी है.
Life is like a school.
ये जीवन एक पाठशाला की तरह है.
It's supposed to prepare us for the final exam.
और यहाँ पर जो वार्षिक परीक्षा होती है उसके लिए हमको सिखाया जाता है.
Some people they say, let me just enjoy eating, sleeping, mating, defending, and all the entertainment of this world, and at the time of death, I will just think of Krishna.
कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं कि अभी मुझे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब सांसारिक आनंद की चीजों को करने दो, और जब अंतिम समय आएगा तब मैं श्री कृष्ण के बारे में स्मरण करूंगा.
But if your children tell you, I will not attend any classes, I will not read any books, I will not study anything, I will just go and take the final exam and get my degree.
लेकिन अगर आपके बच्चे ऐसे कहेंगे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, कोई किताब नहीं देखूंगा, लेकिन बस जिस दिन वार्षिक परीक्षा अंतिम एग्जाम होगी उस दिन जाकर अपना पेपर लिख के मैं डिग्री को प्राप्त कर दूंगा.
Today the young people of India are just straining their poor brains to get good grades on their exams.
आज तो भारत के सारे जो बच्चे हैं वो इतना अपने दिमाग पर जोर दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अच्छे नंबर लाएं.
And the parents are pushing.
और उनके माँ बाप उनको हर रोज बहुत जोर जबरदस्ती करते हैं.
I spoke to one young man. He told me he decided he wanted to go to IIT. So he studied day and night for 3 years just for that exam.
मैं एक नवयुवक से बात कर रहा था. उसको IIT में प्रवेश करने की इच्छा थी तो 3 साल लगातार वो पढ़ाई करता रहा सिर्फ एक परीक्षा को पास करने के लिए.
But we should know what is the final exam.
लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि आखिरी परीक्षा कौन सी है.
Death.
वो है मृत्यु.
We only live for a short time in this world, and according to how we grade on that final exam, we either go down into the lower species or go below them into the hellish planets, or we may continue on struggling in this human life, or maybe elevated to a more enjoyable place. But to pass the exam means to think of Krishna and go back to the spiritual world where there is no more birth, no more death, simply eternal pleasure in the Leela of the Lord.
तो किस प्रकार से हम ये परीक्षा देते हैं उसका मतलब है या तो हम नीच योनि में प्रवेश करते हैं या उससे भी नीचे जाकर नरकवास भोगते हैं, या हम इसी दुनिया में रहते हैं या कुछ स्वर्ग सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण या पास होने का मतलब है श्री कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त करना, जहां पर ना तो कोई जन्म है ना तो कोई मृत्यु है, केवल आनंद ही आनंद है.
And Prahlad Maharaj told us, Komara Achare Pragyo Dharman Bhagavataniha, that now, when you are little children, you may have your studies, you may have your schools, that is all right. But the most important thing is to cultivate this consciousness of Krishna. We cannot wait. And the simple process by which we can always remember Krishna and naturally remember him in our life and at the time of death is to always remember his holy names.
लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा है कि यही अभी जो कौमार्य अवस्था है, अभी जब आप छोटे बालक हो तभी यह स्थिति है कि कृष्ण भावना भावित होना या कृष्ण भक्ति की प्राप्त करना.
The first and only duty of a parent in the eyes of God is that the parent raise the child in such a way that that child never has to take birth again in this material world.
भगवान की दृष्टिकोण से सारे माता पिताओं का एकमात्र कर्तव्य यह है कि उनके जो उनकी संतति जो है उसको फिर से इस दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्र में ना पड़ा जाए.
This means training the child by your words and by your example to always remember Krishna by chanting his holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो इसके लिए महाराज बता रहे हैं कि हम ऐसा जीवन जिए और ऐसा उदाहरण दिखाएं कि बच्चे जब हमें ऐसे नाम जप करते हुए देखें तो वो खुद अपने जीवन में इस महामंत्रों को स्थान दे सकें.
So Srivas was very happy that his son died because he went back home back to Godhead.
तो अपने प्रत्येक पुत्र की मृत्यु को देखकर श्रीवास को वास्तविक बहुत आनंद हो गया क्योंकि उन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति की थी.
And he told his family members, stop crying.
और उन्होंने अपने सारे परिवार के सदस्यों से कहा कि तुरंत रोना बंद कर दो.
But if somehow you can't stop crying, cry silently.
लेकिन अगर आप रोना बंद नहीं कर सकते कम से कम धीरे धीरे रो.
Because Lord Chaitanya is dancing in ecstasy in our home.
क्योंकि हमारे घर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भावोल्लास के साथ नृत्य कर रहे हैं.
And the perfection of our life is that he be happy.
और हमारे जीवन का यह उद्देश्य है कि वो सुखी हो सके.
We should not interrupt his bliss with our sorrow.
हम उनके आनंद में अपने दुख से अवरोध नहीं बनाना चाहिए.
If he is happy dancing and chanting in ecstasy in our home, then we should know that he will take care of everything.
अगर वो हमारे घर में बहुत अच्छी तरह से नृत्य गायन कर रहे हैं, उनको उसमें आनंद मिल रहा है, तो हमको ये निश्चित होना चाहिए कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे.
So all the family members became very peaceful.
तो सारे परिवार के सदस्य शांत हो गए.
And Srivas went back into the kirtan.
और श्रीवास फिर से कीर्तन में चले गए.
And he was so jubilant to see Lord Chaitanya dancing and chanting that Srivas became more and more and more joyful with his hands raised, dancing, ecstatically chanting Krishna's holy name.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जोर से. Ram, Hare Ram. Ram, Ram, Hare, Hare.
And the kirtan went on hour after hour after hour throughout the entire night while all the devotees were simply absorbed. And as they looked at Srivas's bliss, everyone just became more ecstatically immersed in enthusiastically calling out Krishna's holy name.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Ram, Ram, Hare, Hare.
At the end of the night, gradually through the night, more and more devotees were hearing the news that Srivas' son has died.
तो श्रीवास ठाकुर जो है बहुत भावोल्लास के साथ नृत्य करने लगे. ये नृत्य चलता रहा, लेकिन कुछ भक्तों ने ये ठान लिया कि अंदर कुछ तो बहुत अशुभ घटना घटी है.
And naturally, when you love someone, even if he goes back to Godhead, there's sorrow that that person is gone.
लेकिन भले ही आप किसी से प्रेम करते हो और वो अगर भगवत धाम भी चला गया हो, लेकिन विरह का शोक तो होता है ही.
So Lord Chaitanya stopped the kirtan.
चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को बंद कर दिया.
He said, "I sense some sorrow in this house. Has anything happened?"
चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं जान सकता हूँ कि कुछ तो यहाँ पर दुख की घटना हुई है. क्या यहाँ पर कुछ अशुभ समाचार हुआ है?
And the father of the son, Srivas, very blissfully, he said, "My Lord, with you dancing in ecstasy in my house, how could any sorrow come into our lives?"
श्रीवास ने बड़े ही उत्साह के साथ कहा
कि प्रभु अगर आप हमारे घर में इस प्रकार से भावोल्लास के साथ नृत्य गायन कर रहे हैं तो कौन सा अशुभ समाचार हो सकता है.
Because you are chanting with your devotees the holy name, everything is auspicious.
क्योंकि आप अपने भक्तों के साथ यहाँ पर संकीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ शुभ है.
And then the devotees, they told Lord Chaitanya that about 2 hours after the sunset, Srivas's son died.
और भक्तों ने महाप्रभु से कहा कि सूर्योदय के पश्चात दोपहर के बाद श्रीवास के पुत्र की मृत्यु हो गई.
That was about 7.5 hours ago.
ये बात मतलब 7.5 घंटों पहले की थी.
So Lord Chaitanya asked, "Why didn't you tell me?"
चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं?
And Srivas said, "My son has gone back home, back to Godhead."
श्रीवास ने कहा मेरा पुत्र तो भगवत धाम चला गया है.
By your mercy.
आपकी कृपा से.
And everyone knows that.
और सबको सब लोग ये जानते हैं.
And we did not want to even for 1 second interrupt the pleasure you were having dancing and chanting with your devotees.
और हम आपके इस भक्तों के साथ जो आप नृत्य गायन कर रहे थे उस आनंद में एक क्षण का भी विघ्न नहीं डालना चाहते थे.
When Lord Chaitanya heard the words of Srivas, he began to uncontrollably weep tears of love.
महाप्रभु ने जब श्रीवास के ऐसे वचन सुने तो वो अनिर्बंध रूप से अश्रुपात करने लगे.
He said that how could I ever give up the association of Srivas Thakur?
उन्होंने कहा कि भला मैं श्रीवास का संग कैसे छोड़ सकता हूँ?
His love for me is so great that he didn't even mind losing the association of his own son just so that my kirtan would remain in great happiness.
उनका मेरे पति प्रेम इतना महान है, इतना उदात्त है कि उन्होंने पुत्र का वियोग भी क्योंकि मेरे आनंद में विघ्न डालेगा इसलिए उसे मुझे बताया नहीं.
And he continued to weep.
और महाप्रभु अश्रुपात करते रहे.
And when the devotees saw this, they were struck with wonder to see the love that the Lord had for Srivas.
और महाप्रभु का श्रीवास के प्रति प्रेम देखकर सारे भक्त विस्मय चकित हो गए.
But they were not able to understand his words.
लेकिन वो महाप्रभु के वचनों को सुन नहीं समझ नहीं पा रहे थे.
How could I give up the association of someone who loves me so much?
मैं जो मुझे इतना प्रेम करेगा उससे मैं कैसे बिछड़ सकता हूँ?
Because Lord Chaitanya knew in the near future he would take sannyas, and for the sake of giving Krishna consciousness to the whole world, he would have to give up the company of such devotees like Srivas.
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि शीघ्र ही वो सन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले थे जिससे कि वो सारे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार कर सके, और अगर ऐसे उनको सन्यास आश्रम ग्रहण करना है तो भला वे अपने अंतरंग भक्तों से कैसे वियोग सहन कर सकते हैं.
The thought of this made his heart break and he wept tears of love for his devotees.
इस विचार से ही श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय विदीर्ण हो गया और वो क्रंदन करने लगे.
Just to chase after the most sinful and fallen souls of this world, the Lord exhibited the supreme opulence of renunciation just to give us this Harinam Sankirtan movement.
केवल इस दुनिया के अत्यंत नीच और पापी जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु ने परमोच्च ऐश्वर्य जो कि वैराग्य का है उसका प्रदर्शन किया.
Then Lord Chaitanya and his associates went into the room where the body of the dead child was laying.
फिर चैतन्य महाप्रभु और उनका भक्त वृंद उस कमरे में गया जहां पर श्रीवास के बेटे की लाश रखी थी.
Shri Gaur Sundar spoke to the dead corpse to everyone's great surprise.
और सभी लोगों को ये देखकर आश्चर्य हो गया कि श्री गौर सुंदर महाप्रभु उसी लाश के साथ बात करने लगे.
He said, "My dear child, why have you left the house of your father, Srivas?"
उन्होंने कहा कि प्रिय बालक आप अपने पिता का घर छोड़कर क्यों चले गए?
And then, to everyone's great astonishment, a wonderful miracle took place.
और सबको ये देखकर आश्चर्य हो गया कि एक बहुत अद्भुत घटना घटी।
The child rose from the dead.
वो बालक फिर से जीवित हो उठा।
And began to speak.
और बात करने लगा।
He said, "My Lord, you are the supreme controller and master. Wherever you tell me my soul must go, that is where I must go."
उन्होंने कहा, प्रभु, आप तो मेरे नियंत्रक हैं। आप जहां कहेंगे कि आप यहां चले जाओ, मुझे तो वहीं जाना है।
The Lord, the child continued and said that this body is a temporary residence for the soul.
बालक और वचन बोलने लगा। उसने कहा कि ये शरीर तो आत्मा के लिए एक अस्थाई निवास स्थान है।
And according to our previous karma, we are destined to leave this body at a certain time.
और कर्मफल के अनुसार निर्दिष्ट समय पर हमको ये शरीर त्यागना ही पड़ता है।
And that destiny cannot be changed.
और ये प्रारब्ध कभी बदला नहीं जा सकता।
At allotted time, we all must die.
निर्देशित समय पर हमें त्यागना ही पड़ता है।
So now, by your will, I am going to my next destination.
तो आपकी इच्छानुरूप मैं अभी अगले गंतव्य स्थान पर जा रहा हूँ।
I will no longer have the auspicious pleasure of living in the house of Srivas and hearing your wonderful kirtans.
मुझे अभी फिर से श्रीवास जी के घर पर निवास करके ये बहुत ही मंगलमय संकीर्तन में सम्मिलित होने का भाग्य नहीं प्राप्त होगा।
But I beg you for one benediction.
लेकिन मैं आपसे एक वरदान की भिक्षा मांगना चाहता हूँ।
That wherever you want this soul to go after it leaves this body, that it never forgets you, it always remembers you.
कि आप मुझे कहीं भी भेजो, लेकिन मुझे आपका कभी विस्मरण न होने देना, सदा आपका स्मरण होने देना।
I offer my prostrated obeisances unto your lotus feet and the lotus feet of all of your devotees. I beg forgiveness if I have made any offenses. Now please give me permission to depart back according to the destination you have selected for me.
मैं आपके और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के चरणों के प्रति विनम्र दंडवत अर्पण करना चाहता हूँ और अब मेरी विदा लेने का समय आ गया है। आप मुझे आज्ञा दीजिए।
And then the Lord sent that child's soul back to the spiritual world to enter again into his eternal loving lila.
और चैतन्य महाप्रभु ने उस आत्मा को फिर से दिव्य भगवत धाम में भेज दिया, जहां पर वो फिर से भगवान की लीला में सम्मिलित हो सके।
And his body became completely silent.
और उसका कलेवर अचेत हो गया।
And everyone rejoiced.
और सभी ने बहुत आनंद मनाया।
And Lord Chaitanya turned to Srivas and said, "Do not think that you have lost one son."
और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास से कहा कि कभी भूल से ये नहीं सोचना कि आपने अपने पुत्र को खो दिया है।
But because of your great love for me and detachment from anything apart from serving me, today I declare to you that Lord Nityananda Prabhu and myself will always be your sons.
कि आप मुझ पर इतना प्रेम करते हो और मेरी सेवा के व्यतिरिक्त सारी चीजों का आप त्याग करते हो, इसलिए मैं और नित्यानंद प्रभु सदा आपके इस आंगन पर निवास करेंगे।
And then all the family members and all the devotees became ecstatic in love of God and raised their arms and had beautiful kirtan of chanting the holy names.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. और सारे परिवार के सदस्यों ने इस प्रकार से अत्यंत उल्लासित होकर संकीर्तन किया।
And Lord Chaitanya Mahaprabhu with all the devotees took the body of the child to the Ganges, performed the last rites, took their bath in the Ganga, and through the whole thing the kirtan was going on in great jubilation.
और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उस बच्चे के मृत देह को उठाकर वो गंगा जी ले गए। वहां पर उन्होंने गंगा में स्नान करवाया अंत संस्कार किए और इस सारे क्रिया में वो सतत हरिनाम का जप किया करते थे.
And Sri Vrindavan Das Thakur explains that anyone who hears the beautiful pastime of the passing of Srivasa's son during the kirtan of Lord Gauranga will most definitely achieve pure unalloyed devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna.
और वृंदावन दास ठाकुर ने हमें ये आशीष दिया है कि कोई भी व्यक्ति श्रीवास के पुत्र का संकीर्तन के समय देह त्याग का की लीला श्रवण करेगा उसे अंत में विशुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी.
If we hear this wonderful pastime with faith, we will be free from death and enter into eternal life.
अगर आप श्रद्धा पूर्वक इस लीला का श्रवण करेंगे तो आप मृत्यु के परे जाकर भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं.
So Srila Prabhupada traveled throughout the world to give us all this great benediction which can free us from the clutches of death, which can give us entrance into eternal life.
Srila Prabhupada ne sare vishv mein bhraman karke itna prachar kiya jisse ki hum mrityu ke changul se bach nikle aur hum divya bhagavad dham mein pravesh karne yogya ho jaye.
Following in the footsteps of Lord Gauranga Mahaprabhu, he accepted the order of sannyas.
Gauranga Mahaprabhu ke charan chinno ka anusaran karke Srila Prabhupad ne sannyas ashram grahan kar liya.
A sannyasi, one of his duties is to beg alms.
Ek sannyasi ka kartavya hai ke bhiksha mangna.
Srila Prabhupad went to the western world to beg only one alms.
Srila Prabhupad paschatya jagat mein jaakar केवल एक मात्र भिक्षा की याचना करते रहे.
The only alms I beg, he said, was please worship Krishna, chant Krishna's names, teach others about Krishna. Krishna is your mother, your father. He is your very life. He is your real treasure and wealth. Chant his holy names.
श्रील प्रभुपाद कहते कि मैं आपके सामने एकमात्र भीख मांग रहा हूं कि आप कृष्ण को भजो, कृष्ण नाम को बोलो, कृष्ण को अपना माता, अपनी माता, अपना पिता, अपना धन प्राण सब कुछ कृष्ण को ही समझो.
चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी.
हरे कृष्ण का जप करो और सुखी हो जाओ.
श्री प्रभुपाद की
जय.
श्री गौरांग महाप्रभु की
जय.
श्री हरिनाम संकीर्तन की
जय.